शांति। त्याग और तपस्या की आदर्श मूरत आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपने मेडिकल स्टडीज की मुंबई में और 1962 में जब आपकी स्टडी पूरी हुई बाबा का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ और उसके बाद तो चूंकि मेडिकल स्टडी की हुई थी और बाबा का ज्ञान प्राप्त किया तो मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों के द्वारा आत्माओं की सेवा करना आरंभ की। 1966 में आपके पिता ने आपको सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया, जिस सेवा केंद्र पर रहकर आपने अनेक आत्माओं की सेवा की और क्लिनिक भी खोला, तो दोनों तरीके से आपने आत्माओं की खूब सेवा की। और इसी सेवा के चलते 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा अर्थ सिलेक्ट किया और 71 में आप विदेश की धरनी पर सेवा अर्थ गए यूके लंदन में और 78 तक विदेश की धरनी में अलग अलग स्थानों पर जैसे कि कहा यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी, मॉरिशस आदि आदि अलग अलग स्थानों पर करीब 8 वर्षों तक आप सेवा करते रहे, सेवा केंद्र खोलते रहे, बाबा के बच्चे तैयार करते रहे और फिर 78 में आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना सेवाओं का बेस बनाया। सिडनी में रहे आप और 78 से लेकर 2008 तक आपने सिडनी में रहकर एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का विस्तार किया कि जिसके अंतर्गत आज की डेट में करीब 18 देशों की सेवा हुई है, जहां 18 देशों में सेवा केंद्र खुले हैं, बाबा के बच्चे निकले हैं। तो वर्तमान में हम कहेंगे आप एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल डायरेक्टर हैं। और फिर तो 2009 में बाबा ने आपको मधुबन में ज्ञान सरोवर में बुला लिया, तो वर्तमान में ज्ञान सरोवर एकेडमी का भी डायरेक्टर पद आपके ही कंधों पर है। तो देश क्या विदेश क्या दोनों ही धरनी का आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। और इतना ही नहीं, दादियों के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ की भी जिम्मेवारियां और बढ़ती गई, तो आप वर्तमान में हमारे यज्ञ के जॉइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। बहुत सारी और भी जिम्मेवारियां गुप्त रूप से होती रहती हैं, आपके कंधों पर हैं, लेकिन बावजूद इसके आप बहुत बहुत इजी रहते हैं। बिजी रहते हुए भी इजी कैसे रहें, दीदी उसका आदर्श उदाहरण है। बहुत ही लाइट, जितनी ज्यादा जिम्मेवारियां उतना ही फिर उपराम अवस्था भी, न्यारी प्यारी अवस्था। न सिर्फ इतना, लेकिन बहुत बहुत मितभाषी भी है। बहुत कम शब्दों में बाबा के बड़े बड़े गुह्य राज समझा देते हैं। तो ऐसी हमारी दीदी जिन्होंने बाबा से, मम्मा से, दादियों से पालना लेकर अपने जीवन को तपस्या में तपाया, योग और तपस्या की ज्वलंत उदाहरण मूर्त आज हमारे सामने। हम अपनी योग तपस्या में कैसे महसूसता द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करें, ये जो हमारा लक्ष्य है उस पर दीदी प्रकाश डालेंगे। हम सुनते हैं दीदी को, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। ओआरसी में कितनी भर्ती की है आप लोगों ने, जिन्होंने एक भर्ती किया तब हाथ उठाओ। ओआरसी में दो, तीन, चार, अच्छा देखो आप बहुत भाग्यशाली हो जो पांडव भवन में भर्ती करने का आपको चांस मिला है। ब्रह्मा कुमारी की रीति से तो सब आपको पहचानते होंगे, सफेद कपड़े पहने हैं, बैज पहना है, माना ब्रह्मा कुमारी है। परंतु बाबा कहते हैं आपको तपस्वी कुमार कुमारी की रीति से लोग पहचाने, इतनी आपकी तपस्या हो जो आपके चेहरे से लोग समझ जाए कि ये ब्रह्मा कुमारी है, तपस्वी कुमारी है। तपस्या का फाउंडेशन है वैराग्य, त्याग और तपस्या। पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग्य हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, न खाने का, न पहनने का, न घूमने का, न डांस डिस्को आदि का। और इतने तक के ये भी ना हो हमारा मकान बहुत सुंदर हो, मॉडर्न हो, डेकोरेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि आजकल सेंटर वाले यही सोचते हैं कि हमारा मकान बहुत बड़ा हो। स्टूडेंट भल 2500 पर हॉल चाहिए 200 का। तो ये इच्छा, चाहे कार चाहे मोटर बाइक चाहे घूमना फिरना, क्योंकि हमने देखा है आजकल विंग वाले क्या करते हैं, विंग की मीटिंग अलग अलग नए देशों में रखते हैं या नए नए स्थान पर। तो नया स्थान भी देख लेते हैं, घूम भी लेते हैं और मीटिंग भी कर लेते हैं। वैराग्य है पुरानी दुनिया से, विकारों का त्याग है। तो नेचुरली तपस्या सफल होंगे। तो आप यहाँ 3-4 दिन जो तपस्या करने आए हैं, लक्ष्य रखना कि हमको जो अनुभव अभी तक नहीं किया है वो अनुभव करना है, क्योंकि बाप दादा के लिए हम गाते हैं, तुम माता पिता बंधु सखा विद्या द्रविणम त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इन सब संबंधों से जिस संबंध का अनुभव नहीं किया है वो करना जरूर है, क्योंकि बाबा से वो संबंध बांधने से फिर लौकिक संबंध में से मोह टूट जाएगा। नहीं तो बच्चों में मोह होता है, पति में मोह होता है, माँ बाप में मोह होता है। तो आजकल तो बाबा नष्ट मोहा बनने के लिए बहुत हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, किसी में भी हमारा मोह ना हो। और भट्टी माना 3 प्रकार का मोह, मन का भी मोह, फालतू संकल्पना आए, वाचा का भी मोह। ऐसे नहीं समझे कि भल हम दिल्ली में रहते हैं परंतु 1-2 से मिले नहीं हैं, चलो 1-2 का हाल चाल पूछ ले वे नहीं। और तीसरा मौन है मोबाइल का। तीन दिन मोबाइल का मौन कौन रख सकते हैं? जरा हाथ उठाओ। गुड। तो 3 दिन का मौन रखना है। आज का दिन घर वालों से बात कर दो कि हम आराम से पहुंच गए हैं, 3 दिन हम भट्टी में हैं। फिर जाने के दिन ऑन करना फोन। तो आज आपको हम एक गिफ्ट देते हैं, सूक्ष्म गिफ्ट, फरिश्ते की ड्रेस। यहां चलते फिरते अपने को फरिश्ता समझ के चलना, जिसको भी देखो फरिश्ता, खुद को भी फरिश्ता समझ कर चलो। फिर आप घर जाएंगे या सेंटर पर जहां भी जाएंगे, घर वाले सोचेंगे मधुबन से तो ये क्या परिवर्तन होके आए हैं। वो भी देखे आपका परिवर्तन, तब कहेंगे आपकी पांडव भवन की तपस्या फलीभूत हुई है। अब इस भट्टी का आपको लक्ष्य दिया गया है, रियलाइजेशन द्वारा संपूर्णता, महसूसता की शक्ति, क्योंकि पहले तो हमें महसूस होना चाहिए कि हमारे में क्या कमी है, क्या गुण की कमी है, क्या अवगुण है, क्या विकार है, कौन सा संबंध हमने बाबा से अनुभव नहीं किया है, क्योंकि आजकल हमारे 5 पॉइंट्स है, मनसा और वाचा दोनों सेवा एक साथ करें। तो अंत में तो हम जानते हैं कि मनसा सेवा ही संभव होंगे। अभी तो हम चलो वाचा सेवा भी कर लेते हैं और मेजोरिटी समय वाचा सेवा में जाता है, पर मनसा सेवा इतनी नहीं होती है। तो इसलिए तपस्या द्वारा हमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण धारण करने हैं, क्योंकि संपूर्ण बनने का ये एक ही उपाय है, बाबा की याद। तो जितना बाबा से प्यार उतनी याद, और जितनी याद उतने गुण संपन्न बनेंगे। तो ये रियलाइज करना है, क्योंकि जब तक रियलाइजेशन नहीं, परिवर्तन नहीं। ब्राह्मण जीवन है ही लक्ष्य, है ही मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है, और ऐसे 3-4 दिन निकाल के जब हम बैठते हैं तो नेचुरली बहुत प्राप्ति होती है। आप में से कईयों ने अभी तक वर्ष में भी भट्टी नहीं की है, ये तो सरप्राइज है, क्योंकि वर्ष में तो कई देशी विदेशी आते हैं भट्टी करने, ट्रेनिंग करने। अच्छा, तो पहले तो हमें देखना है कि संपूर्णता क्या है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकार्य, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा लक्ष्य है। तो कम से कम 36 गुण हम देखें कि हमारे में है। पहला है एक्यूरेट, दूसरा है गुरुगुण ग्राहक, तीसरा है परोपकार, चौथा है निश्चिंतता, चिंता ना हो, बाप के ऊपर जिम्मेवारी रख दो, अपने को बच्चा समझ लो। वैसे तो है ही बच्चे, परंतु क्या होता है, समाज में रहते अपने को जिम्मेदार समझ लेते हैं कि हम माँ बाप है, हमारी जिम्मेवारी है बच्चों को संभालने की। तो ये भी चिंता ना, हर्षित मुक्ता, स्वच्छता, संतुष्टता, सहयोग, साहस, करेज, हिम्मत, न्यारापन, दृढ़ता, ये बहुत जरूरी गुण है हमारे परिवर्तन के लिए। दृढ़ता हो, रियलाइजेशन हो पहले, पीछे दृढ़ता कि मुझे बदलना ही है। डिसिप्लिन, सरलता, निरअहंकारिता, स्फूर्ति, दूरदर्शिता, निर्भयता, कोई भय ना हो, उदारता, शुभावना, ईमानदारी, नम्रता, अंतर्मुखता, बहुत जरूरी है। जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे, अंतर्मुख रहेंगे, तपस्या सहज हो जाएंगे। क्या है, हम लोगों को बाह्य मुक्ता में रहने की आदत है ना, जहां भी जाएंगे देखेंगे अच्छा ये रूम कितना बड़ा है, कौन से डेकोरेशन पीस है, कारपेट कैसा है, फर्निशिंग कैसा है, आदि आदि। और माताएं शॉप में जाएंगे ना, देखेंगे कौन सा लेटेस्ट कलर है, कौन सी लेटेस्ट स्टाइल है। रास्ते में चलते चलते निरीक्षण करते हैं किसने क्या पहना है, साड़ी ब्लाउज मैच होते हैं या नहीं, सब मैचिंग है या नहीं, पर्स वगैरह, मेकअप। बाह्य मुक्ता, हल्कापन, लाइट रहना है, गंभीरता, रहमदिल, सेवा के लिए रहमदिल होना बहुत जरूरी है। भगत बेचारे भटकते रहते हैं, दुखी है, उनको मदद करनी है। आज्ञाकारी, बाप के आज्ञाकारी, आजकल बाबा श्रीमत पर चलने के लिए बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। नियमितता, धैर्यता, शालीनता, रॉयल्टी, पवित्रता, प्यार, आत्मविश्वास, सादगी, मधुरता, अथक और सहनशीलता, ये सब देखना है कि हमारे में गुण है नहीं है तो धारण करने हैं। तो इसके लिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। ऑनेस्टली अपने आप को देखना है कि मेरे में क्या कमी है, कमजोरी है। देवता बनना है, ये लक्ष्य सामने हो। 16 कला संपन्न, सोचने और रचने की कला, दूसरा खुश और संतुष्ट रहने की कला, तीसरा सीखने और सिखाने की कला, चौथा स्वस्थ रहने की कला, पांचवा सुधार और विकास करने की कला, छठा काम और आराम करने की कला, बोलने की कला, भाषण करना है तो बोलने की कला होनी चाहिए, उस समय नर्वस ना हो जाएं हम। पत्र लिखने की कला, मैं जब पहले ज्ञान में आई ना, ब्रह्मा बाबा ने कहा पत्र लिखो मिनिस्टर को, तो बाबा चेक कर रहे थे कि इसको लिखने आता है या नहीं। श्रेष्ठ व्यवहार करने की कला, मित्र व अपना बनाने की कला, पालना करने की कला, टीचर है स्टूडेंट की पालना करनी है, हास्य व विनोद की कला, बेकार को अच्छा बनाने की कला, व्यवस्था एवं प्रशासन की कला, नेतृत्व की कला, गुप्त रखने की और प्रत्यक्ष करने की कला। कोई कोई बातें हैं हमें गुप्त रखनी ही चाहिए और कोई कोई बातें हैं वो प्रत्यक्ष करनी है, ये भी कला होनी चाहिए। और साथ में परखने की शक्ति चाहिए कि क्या 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 बताना है क्या नहीं बताना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम ऑनेस्टली सब कुछ बता दें तो फिर क्या होता है कि हम दूसरों का ओपिनियन बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए देखना है। क्या है यज्ञ में, आज ही हमको कोई कह रहा था कि अकाउंटेंट है, हिसाब नहीं देता है। तो ये तो बाबा ने सिस्टम बनाई है, क्या आता है क्या जाता है वो सिर्फ एक दो को ही बताते हैं, सबको नहीं बताते। तो विदेश से कोई भेजते थे पैसा, तो पूछा ललित भाई को, ललित भाई ने कहा वो तो हम नहीं बताएंगे, ललित भाई को भेजना बंद कर दिया। अच्छा, अभी हमें ये देखना है कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है, मायाजीत बनना है, संपूर्ण बनना है, मायाजीत जगतचित बनना है। तो उसकी सूक्ष्म निशानी क्या है? तो पहले हम ईगो लेंगे, अहम। ईगो वाले अपने को असुरक्षित समझते हैं और उन्होंने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, समझते मेरे जैसा और कोई नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं तो दूसरों का अपमान करते हैं। तुम तो बुद्धू हो, कितनी बार बोला कितनी बार समझाया फिर भी नहीं करता है, आदि आदि। और ईगो वाला बाहर से एक अंदर से दूसरा, अंदर में नर्वस होगा पर बाहर हंसते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक भाई हमारे साथ प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में हंसता था, मैं समझ नहीं कर पाई कि ये क्यों हंसता है पर्सनली। फिर अंत में मैंने पूछा कि तू क्यों इतना हंसता था, तो कहता है बहन जी मैं नर्वस था, सार्केस्टिक। दूसरों को चिढ़ाएंगा, टॉन्ट मारेंगा और बात बात में मैं ही ऐसा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, अपनी पोजीशन का नशा दिखाऊंगा, अपनी ब्यूटी का, हेल्थ का, धन का, कूल का नशा। और नाजुक बात बात में अपसेट हो जाएगा, मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। और अथॉरिटी से बात करेगा, अपना आइडिया एम्फसाइज करेगा कि ये मेरा आइडिया, ये ही करना है। बॉसी और औरों की क्रिटिसाइज करेंगे। फिर देहभान, वो सबसे सबसे पहला आता है देहभान। जो देहभान वाले हैं ना, उनको अपनी दया आती है, मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी राय मानते नहीं, मुझे सेवा नहीं मिलती है आदि आदि, और नर्वस बाह्यमुखी, और ऐसा नखरा करेंगे, बोल चाल ऐसी करेंगे जिससे सबका उनके तरफ अटेंशन जाए। और क्या होता है कि आजकल तो सबको पतली कमर चाहिए, हाँ। हमारे पास एक बहन थी बैले डांसर, अब उसको कहे कि तुमको वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, उसका जो डांस सिखाने वाला है ना, अब यंग है, भूख तो लगती है, खाएंगे तो वजन बढ़ेगा भी हो सकता है। बेचारी क्या करते थे, खा के अंगुली डालकर वॉमिट कर लेती थी ताकि वजन ना बढ़े। और आजकल तो लाइपोसक्शन ऑपरेशन होता है ना, चर्बी निकाल देते हैं, तो वो भी करते हैं, और प्लास्टिक सर्जरी भी होती है, नाक कैसा चाहिए, लिप्स कैसे चाहिए, आंखें कैसी चाहिए, तो कितना समय शक्ति धन खर्च करते हैं, लज्जा आती है, चिंता होती है, और जो सारा समाज करता है हमको भी करना है, नहीं तो लोक लाज होने के कारण समझते हैं कि हमारी पर हंसेंगे लोग। औरों को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे औरों की, झरमुई जंगमुई करेंगे। तो देखना है कि ये पुराने संस्कार ना रहे हमारे, अभी देही अभिमानी होकर रहें, अटेंशन रखें, ऐसे नहीं बहाने दो भाई ये तो मेरे संस्कार है ना क्या करें, नहीं अभी मैं शूद्र नहीं रही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा सब कुछ बदलना चाहिए। काम विकार का सूक्ष्म रूप क्या है, प्रभावित हो जाना, वस्तु वैभव या व्यक्ति से प्रभावित हो जाना या उसकी विशेषता से प्रभावित हो जाना। ब्रह्मा कुमारी है, इसका तो भाषण बहुत अच्छा है, भूल जाते हैं कि ये तो बाबा का ज्ञान है, या कोई योग कराता है मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है, तो बाबा की शक्ति है। इच्छा, किसी को टच करे, किसके साथ बात करे, नाम रूप का प्यार, सारा दिन उसकी महिमा करते रहेंगे। नेचुरली उस जिसकी महिमा करते उसका रूप सामने आएगा। आकर्षित हो जाएंगे। फैमिलियरिटी, देखो बाबा कहते हैं मैं एक आपका फ्रेंड हूं, दूसरे सब भाई बहन हैं, तो फैमिलियरिटी ना हो। मोह, मोह का कारण क्या है? एक दो के ऊपर आधारित हो जाते हैं। मेरापन, बाबा कहते हैं ना अपने शरीर से मोह हो, ना अलौकिक परिवार से मोह हो, ना अपने वस्तु वैभव से मोह हो, तो कभी ये नहीं कहो ये मेरा है। सब कुछ बाबा को बलि चढ़ा दो, तन मन धन पुराना दे दो, बाबा आपको अनेक गुना नया देंगे। फिर जिसमें मोह होगा, समझो एक माँ को चार बच्चे, जिसमें मोह होगा उसको फेवर करेंगे, उसके लिए पहले उसके पसंद का खाना निकाल देंगे, उसके पसंद का कपड़ा ले आएंगे, आदि आदि। नेचुरली दूसरे बच्चों को ईर्ष्या होंगे। और अपना हक जमाएंगे, तुम मेरा पति हो तुमको ये करना है, तुम मेरी पत्नी हो तुमको ये करना है। एक माता मिली मुझे, वैसे बच्चे जाते हैं विदेश पढ़ने लिए कमाई करने, खुश होते हैं रोते भी हैं। एयरपोर्ट पर दृश्य देखना होता है, जब जाते हैं जब आते हैं रोना, आते हैं तभी भी रोते हैं। एक माता हमको कहे वो मेरा बच्चा अमेरिका गया, उसको जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, वो खा नहीं सकता है जलेबी, कौन देगा उसको, मैं भी नहीं खाती। लोभ, लोभ का कारण क्या है? और चाहिए और चाहिए, तो लोभी को कहते लोभी को थोब नहीं, संतुष्टता नहीं, और इच्छा रहती है ये चाहिए वो चाहिए। बहुत दिन हुआ पानीपुरी नहीं खाई है, भेलपुरी नहीं खाई है, पकौड़ा नहीं खाया है, इच्छा होती है। कुछ अच्छा लगता है कुछ अच्छा नहीं लगता है, जो खाना अच्छा लगता है डबल खाएंगे, और जो अच्छा नहीं लगता कहेंगे आज तो भूख नहीं है। लोभी है ना वो स्वार्थी होते हैं और मनहूस होते हैं, ना खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे, पुराना भी फेंकेंगे नहीं। आप देखेंगे बूढ़ों का सामान पुराना फेंके भी नहीं, नया तो खरीदते जाएंगे। गुस्सा, उसका कारण है सहन नहीं कर सकते हैं और धैर्य नहीं, तो चिड़चिड़ापन सूक्ष्म रूप, धैर्य नहीं, अपसेट हो जाते हैं, फोर्सफुल। पैसिव, आप वहां से आते हो, मेरा आपसे गुस्सा है, सामने नहीं देखेंगे, जैसे देखा ही नहीं उस तरह से चले जाएंगे, सामने आएंगे तो ओम शांति करना पड़े, हेलो करना पड़े, कुछ करना पड़े, दूसरे साइड से चले जाएंगे। डिबेट करते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे, तो अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, गुस्सा आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि पति है, ज्ञान में नहीं है, तो क्या करता है, गुस्सा करता है, क्योंकि उनका काम विकार की इच्छा पूरी नहीं होती। अलबेलापन, अलबेले लोग है, ठीक ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, फिर बहानेबाजी करेंगे, मैंने सोचा फलाना करेगा, मैं तो भूल ही गया। और अधबेले लोग अपना समय शक्ति धन व्यर्थ गंवाएंगे, क्योंकि संगम युग में संकल्प समय शक्ति बोल सब बहुत वैल्यूएबल है, वो व्यर्थ नहीं गंवाना है। और कहेंगे I don't care, उसको जो करना है करे। आलस्य, जब उमंग उल्लास नहीं होता है तो आलस आता, तो जो आलसी होता है ना, बहाना क्या बताएंगे, थका हुआ, दूसरा कोई करे। और अपने को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता है, एक स्थान पर आराम से बैठा रहेगा, नेचुरली भाग्य बनाने से वंचित हो जाएगा। ईर्ष्या क्या है, आजकल एक दो से भेंट करते हैं और खुद इतने एफिशिएंट नहीं है या ब्यूटीफुल नहीं है तो क्या करेंगे, ईर्ष्याएंगे। यदि समान में टिकेंगे तो ईर्ष्या नहीं, उनको भी रिस्पेक्ट देंगे। और नेचुरली है, अपने में कुछ कमी है तो फिर अपने को असुरक्षित समझते हैं। वैर भाव, घृणा भाव, तो जिससे वैर भाव होगा ना, स्थूल में तो मारपीट करेंगे, परंतु सूक्ष्म में क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। कहीं आप समझते हो ये बहुत अच्छा है, पर इसमें ये कमी है, ये कमी आपने देखा नहीं है, तो उसको गिराने की कोशिश करेंगे और बदला लेने की भावना रखेंगे। बाबा कहते हैं बदल के दिखाओ, बदला नहीं लो। और कायदा अपने हाथ में ले लेंगे। इंडिया में यदि कोई ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया तो क्या करेंगे, उसके जो मित्र संबंधी वहां होंगे ना, लाठी लेकर आएंगे, उसको वहीं खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ा गुण है पवित्रता का। ऑनेस्टी है पवित्र लोगों में, ऑनेस्टी है, सिंपल वाइट ड्रेस हमारा सिंपल। स्पिरिचुअल दृष्टि वृत्ति भावना रूहानियत, हरेक के लिए शुभकामना, रॉयल।
तो सभी को दीदी ने भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य से परिचित कराया, तो अवश्य इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपकी अच्छी भट्टी रहेगी। दीदी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।